آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شگفتہ یاسمین۔ سرکار کا کہنا ہے کہ ملک موجودہ مالی سال میں 6.5 سے 7% مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی حاصل کرے گا۔ جموں کشمیر اور ہریانہ میں اسمبلی انتخابات کے لیے مہم عروج پر ہے اور سیاسی پارٹیوں کے رہنما کئی ریلیاں کر رہے ہیں۔ میسورو لوک آیوکت پولیس نے مڈا گھپلے کے کیس میں کرناٹک کے وزیر اعلی سدارامیہ کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک امن کی تمنا کر رہا ہے۔ انڈونیشیا کے مغربی سماترا میں ایک غیر لائسنس شدہ سونے کی کان کے منہدم ہونے سے 15 مزدور ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور مکاؤ اوپن بیڈمنٹن میں ٹریسا جولی اور گایتری گوپی چند کی جوڑی خواتین کے ڈبلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ سرکار نے کہا ہے کہ بھارت موجودہ مالی سال میں 6.5 سے 7% مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی حاصل کرے گا۔ وزارت خزانہ نے اگست کے لیے اپنے ماہانہ اقتصادی جائزے میں کہا ہے کہ موجودہ مالی سال کے پہلے کوارٹر میں تمام اہم غیر زرعی شعبوں میں 5% سے زیادہ ترقی کی وجہ سے معیشت بہتر حال میں رہی ہے۔ کل جاری کی گئی رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ خوردہ افراط زر اور قیمتوں میں اضافہ اوسطاً 3.7% رہا۔ البتہ اقتصادی جائزے میں عالمی تجارت کے محرکات اور عالمی اقتصادی امکانات میں غیر یقینی کی صورتحال سے خبردار کیا گیا ہے۔ ادھر سینسیکس اور نفٹی میں آج اب تک کی سب سے بلند سطح پر پہنچنے کے بعد گراوٹ آئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
سینسیکس میں آج 200 پوائنٹس یعنی 0.3% کی گراوٹ آئی اور یہ 85,571 پر بند ہوا، جبکہ نفٹی 37 پوائنٹس یعنی 0.1% کی کمی ہوئی اور یہ 26,178 پر بند ہوا۔ ادھر بھارتی روپے کی قدر میں 6 پیسے کی کمی ہوئی اور $1.83.70 کا ہو گیا۔ بھارتی صرافہ بازار میں 24 کیرٹ سونے کی قیمت میں 0.18% کی گراوٹ آئی اور 10 گرام سونا 75,650 روپے کا ہو گیا، جبکہ چاندی کی قیمت میں 0.11% کا اچھال آیا اور 1 کلو گرام چاندی 92,740 روپے کی ہو گئی۔ خام تیل کی عالمی منڈی میں برینٹ خام تیل کی قیمت آج $71.67 فی بیرل تھی۔ اردو خبروں کے لیے ارجن چودھری کی رپورٹ کے ساتھ میں اسد اللہ۔
جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے تیسرے اور آخری مرحلے اور ہریانہ میں ایک ہی مرحلے میں ہونے والے انتخابات کے لیے انتخابی مہم عروج پر ہے۔ ہریانہ میں 90 اسمبلی حلقوں کے لیے پولنگ 5 اکتوبر کو ہوگی۔ ریاست میں انتخابی مہم میں بھی تیزی آ گئی ہے۔ سینئر بی جے پی لیڈر اور مرکزی وزیر امت شاہ نے ہریانہ کے امبالہ، کروکشیتر اور ریواڑی میں 3 عوامی جلسوں سے خطاب کیا۔ جناب شاہ نے امبالہ شہر سے حلقہ مولانا اور نارائن گڑھ اسمبلی حلقے کے بی جے پی امیدواروں کے لیے ووٹ کرنے کی اپیل کی۔ وزیر اعلی نائب سنگھ سینی بھی ریلی میں موجود تھے۔ دوسری طرف کانگریس لیڈر اور سابق وزیر اعلی بھوپیندر ہڈا نے شام میں کروکشیتر ضلع کے تھانیسر میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کیا۔ کانگریس لیڈر کماری شیلجا نے آج روہتک میں ایک عوامی میٹنگ کی۔ عام آدمی پارٹی اور دوسری علاقائی پارٹیوں کے رہنما بھی اپنے اپنے امیدواروں کے لیے زور و شور کے ساتھ مہم میں حصہ لے رہے ہیں۔ جموں کشمیر میں آخری مرحلے میں 40 اسمبلی حلقوں میں منگل کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ مختلف سیاسی پارٹیوں کے رہنما ووٹروں کو راغب کرنے کے لیے ریلیاں اور روڈ شو کر رہے ہیں۔ سینئر بی جے پی لیڈر اور وزیر اعظم نریندر مودی کل جموں میں ایک ریلی سے خطاب کریں گے۔ کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی بھی کل مرکز کے زیر انتظام علاقے میں ریلیوں سے خطاب کریں گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی 2 اکتوبر کو جھارکھنڈ کے ہزاری باغ کا ایک روزہ دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم کے ہزاری باغ کے دورے اور جھارکھنڈ اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے بعد آسام کے وزیر اعلی اور انتخابات کے مشترکہ انچارج ہیمنت بسوا سرما نے بتایا کہ وزیر اعظم پریورتن یاترا کی اختتامی تقریب سے خطاب کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی اکتوبر کے پہلے ہفتے میں پارٹی کا منشور جاری کرے گی۔ आयुष के वजीर प्रताप राव यादव ने आज कहा है कि उनकी वजारत आवाम की बहबूद के लिए अहदबंद है। गुजश्ता 100 दिनों में अपनी वजारत की हसूलियाबियों के बारे में नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए जनाब यादव ने कहा कि वजारत और आलमी सेहत तंजीम ने एक समझौते पर दस्तखत किए हैं ताकि आयुष निजाम को आलमी हिफजान सेहत निजाम से मरबूत किया जा सके। वजीर मौसूफ ने दुनिया भर में रिवायती तरीके इलाज को फरोग देने की गरज से दवाओं में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों से मुतालिक वियतनाम के साथ की गई मुफाहमत के एक इकरारनामे का जिक्र किया। उन्होंने रिसर्च मालूमात के तबादले और आयुर्वेदिक तरीके इलाज को फरोग देने के लिए आयुर्वेद से मुतालिक मलेशिया के साथ की गई मुफाहमत के इकरारनामे का भी जिक्र किया। वजीर मौसूफ ने बताया कि आयुष तरीके इलाज की सहूलतें फराहम करने की गरज से हुकूमत हर तहसील की सतह पर खसूसी मेडिकल स्टोर खोलने का इरादा रखती है। उन्होंने ये भी बताया कि उम्र रसीदा लोगों की हिफ्जान सेहत से मुतालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए मुल्क भर में 14,692 आयुष कैंपों का इनेकाद किया गया है।
ये हर घर आयुर्वेद पहुंचाने के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम हमारे मंत्रालय के माध्यम से हम कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा जो कार्यक्रम हम लॉन्च करने वाले हैं वो है देश का प्रकृति परीक्षण। लगभग इस देश के अभी तो हमने टारगेट वैसा 1 करोड़ का बताया है, लेकिन 5 करोड़ लोगों का परीक्षण आयुर्वेदिक के माध्यम से हम वहां पर करने जा रहे हैं।
जनाब यादव ने कहा कि उनकी वजारत ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुर्वेदिक पैकेजेस को शामिल करने की गरज से एक जायजा मीटिंग बुलाई है ताकि आयुष तरीका इलाज को हिफजान सेहत के असल धारे में शामिल किया जा सके। समाजी इंसाफ और तफवीज इख्तियारात के मरकजी वजीर डॉ वीरेंद्र कुमार कल पुणे में 20वें दिव्य कला मेले का इफ्तिताह करेंगे। ये मेला मुल्क भर की दस्तकारी तख्लीकी सलाहियत और दिव्यांग दस्तकारों फनकारों और कारोबारियों के कारोबारी जज्बे को सलाम पेश करने का एक अहम प्लेटफार्म है। इसका मकसद दिव्यांग दस्तकारों के लिए एक अहम प्लेटफार्म फराहम करना है ताकि वो अपनी अशिया को मार्केट तक ले जा सकें, उन्हें फरोग दे सकें और अपनी इक्तसादी हालत बेहतर कर सकें। 20 से ज्यादा रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के तकरीबन 100 दिव्यांग दस्तकार अपनी अपनी अशिया की नुमाइश करेंगे। मेले में आने वाले लोगों को डिब्बाबंद नामियाती खुर्दनी अशिया हैंडलूम और कशीदाकारी के कामों का इल्म हो सकेगा। ये मेला 6 अक्टूबर तक जारी रहेगा। समाजी इंसाफ और तफवीज इख्तियारात की वजारत में माजूर यानी दिव्यांग लोगों को बाख्तियार बनाने के महकमे ने इस मेले का इनेकाद किया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मैसूरू में लोक आयुक्त पुलिस ने मैसूरू शहरी तरक्याती अथॉरिटी मुडा जमीन अलॉटमेंट के केस में वजीर आला सिद्धारमैया के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में सिद्धारमैया को पहले मुलजिम और उनकी अहलिया और भाई को इस केस में दूसरे मुलजिम के तौर पर नामजद किया गया है। बेंगलुरू में एक खसूसी अदालत ने लोक आयुक्त पुलिस को आरटीआई कारकुन स्नेहा मई कृष्णा की एक प्राइवेट शिकायत पर इस मामले में एक फौजदारी केस दर्ज करने की हिदायत जारी की थी। खसूसी अदालत का फैसला कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले के एक दिन बाद आया है जिसमें अदालत ने मुडा के जरिए उनकी अहलिया बीएम पार्वती को 14 मकामात के अलॉटमेंट में बेजाब्तगियों के इल्जाम पर सिद्धारमैया के खिलाफ एक तफ्तीश करने से मुतालिक गवर्नर थावरचंद गहलोत की इजाजत को सही करार दिया था। उत्तर प्रदेश एक पेड़ मां के नाम मुहिम में सबसे आगे है। ये मुहिम वजीर आजम नरेन्द्र मोदी की अपील पर शुरू की गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर इसकी इतला देते हुए जंगलात और माहौलियात के मरकजी वजीर भूपेन्द्र यादव ने कहा कि मुल्क भर में इस मुहिम के तहत 80,84,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। इनमें से तकरीबन 26,50,00,000 पौधे सिर्फ उत्तर प्रदेश में लगाए गए हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस पर एहसानमंदी का इजहार किया और सभी को मुबारकबाद दी। इससे पहले वजीर आला योगी आदित्यनाथ की कयादत में दरख्त लगाएं दरख्त बचाएं अवामी मुहिम 2024 के तहत 20 जुलाई को एक ही दिन में 36,51,00,000 पौधे लगाए गए थे। कौमी तहकीकती एजेंसी एनआईए ने जम्मू डिवीजन के राजौरी और रियासी जिले के कई मकामात पर तलाशी की कार्रवाई की। ये इस साल के जून में एक बस पर दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में की जाने वाली कार्रवाई का हिस्सा है। जिस वक्त दहशतगर्दों ने बस पर हमला किया उस वक्त इस पर सवार यात्री रियासी जिले में शिवखोरी मंदिर से वापस लौट रहे थे। आज दुनिया भर में सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। यह दिन हर साल 27 सितंबर को लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने और मईशतों के फरोग में सेहत के रोल को उजागर करने की गरज से मनाया जाता है। इस साल का मौजू है सेहत और अमन। इस मौके पर सेहत की वजारत ने आज कई इकदाम का आगाज किया, जिनमें प्रयत्न मित्रा, प्रयत्न दीदी, इनक्रेडिबल इंडिया कंटेंट मरकज और हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर सयाहों के तजुर्बात के इजहार का तरीकेकार शामिल है। तफसील हमारे नामा निगार से।
भारत को सियाहत का एक मरकज बनाने के हुकूमत के विजन की तकमील के मकसद से सियाहत की वजारत ने प्रयत्न मित्रा और प्रयत्न दीदी पहल का आगाज किया है। इस पहल के तहत खवातीन और नौजवानों को तरबियत दिए जाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, ताकि उन्हें सियाहत की नई मसनूआत तैयार करने और हेरिटेज वॉक्स, मुख्तलिफ अकसाम के खाने, कुदरती मकामात की सैर और घर में कयाम जैसे तजुर्बात से वाकिफ कराया जा सके। वजारत ने अपने इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल पोर्टल पर एक इनक्रेडिबल इंडिया कंटेंट मरकज की भी शुरुआत की है, जिसमें मुल्क में सियाहत से मुतालिक आला दर्जे की तस्वीरें, फिल्म और न्यूज लेटर्स वगैरह इकट्ठा किए गए हैं। ये मरकज भारत आने वाले सयाहों के लिए सफर से मुतालिक तजुर्बात में इजाफा करने में मददगार साबित होगा। उर्दू खबरों के लिए भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ मैं असदुल्ला।
सिक्किम के वजीर आला प्रेम सिंह तमांग ने सम्मान भवन में एनएचआई, डीसीएल, बीआरओ, पीजीसीआईएल के सीनियर एहलकारों के साथ एक मीटिंग की सदारत की, ताकि रियासत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों में रखना डालने वाले जमीनी मसाइल को हल किया जा सके। मीटिंग के दौरान जमीन को तहवील में लेने, सड़क को बेहतर करने, मुआवजे और तनाजे पर तवज्जो मरकूज की गई, जिसकी वजह से तरक्की में ताखीर हुई है। मौसमियात के महकमे ने नेपाल के नशीबी इलाकों और बिहार में शदीद बारिश के पेश नजर बिहार के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक सैलाब आ जाने से मुतालिक अलर्ट जारी किया है। महकमे ने कल तक चौकसी बरतने को कहा है। तफसील हमारे नामा निगार से।
नेपाल के पड़ोसी इलाकों और कटियार, अररिया, मधेपुरा, शिवहर और मधुबनी जैसे जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। इससे इन इलाकों में मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। महकमे मौसमियात ने शुमाली बिहार में शदीद बारिश से मुतल्लिक येलो अलर्ट जारी किया है। मशरकी चंपारण, मगरबी चंपारण, गोपालगंज, सारण, सीवान, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना और भोजपुर जिलों में मुसलसल बारिश हो रही है। इनमें से कई जिले पहले ही से सैलाब से मुतासिर हैं। पटना से धर्मेन्द्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं आफताब अहमद।
इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने आज न्यूयॉर्क में अकवामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली से खिताब किया। अमन के तई अपने मुल्क के अहद का यादा करते हुए जनाब नेतन्याहू ने कहा कि उनका मुल्क उन दुश्मनों से अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है जो इसराइल को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल ईरान की पुश्त पनाही वाले कई जंगी महाजों पर अपना दिफा करने के लिए मजबूर है। इसराइल हम्मास जंग पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब नेतन्याहू ने कहा कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान मामूल के हालात से मुतालिक एक समझौता अनकरीब होने वाला था, लेकिन पिछले साल 7 अक्टूबर को हम्मास के हजारों दहशतगर्दों ने गजा से इसराइल पर हमला किया और नाकाबिल फहम जुल्म ज्यादती की। उन्होंने जोर दिया कि इसराइल अमन का ख्वाहिशमंद है और वो उस वक्त तक अपना दिफा करता रहेगा जब तक कि हम्मास अपना हथियार न डाल दे। इंडोनेशिया के मगरबी सुमात्रा में गैर लाइसेंस शुदा सोने के कान मुनहदिम हो जाने की वजह से कम अज कम 15 मजदूर हलाक हो गए और दूसरे 36 लापता हैं। आफात नागहानी की रोकथाम से मुतालिक सुलोक एजेंसी के सरबरा इरवान अफंदी ने मीडिया को आज बताया कि यह हादसा सोलोक रेजेंसी में नागरी सुंगाई अबू के मकाम पर पेश आया। उन्होंने कहा कि लापता लोगों को निकालने के लिए भारी साजो सामान के साथ बचाव कारकुनों को तैनात किया गया है। मकाऊ ओपन बैडमिंटन में ट्रेसा जोली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी खवातीन के डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। उसने ताइवान की जोड़ी को 21-12, 21-17 से शिकस्त दी। फाइनल में भारतीय जोड़ी का मुकाबला कल हसीपे ईशान और हंग एन तजू पर मुश्तमिल ताइवान की दूसरी जोड़ी से होगा। क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट के पहले दिन के खेल में बारिश की वजह से रुकावट आई। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने अपनी पहली इनिंग्स में 3 विकेट पर 107 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मैदान गीला होने की वजह से टॉस में ताखीर हुई थी। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सरकार का कहना है कि मुल्क मौजूदा माली साल में 6.5 से 7% मजमूई घरेलू पैदावार GDP हासिल करेगा। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम उरूज पर है और सियासी पार्टियों के रहनुमा कई रैलियां कर रहे हैं। मैसूरू लोक आयुक्त पुलिस ने मुडा घपले के केस में कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरमैया के खिलाफ FIR दर्ज की है। इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने अकवामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली से खिताब करते हुए कहा कि उनका मुल्क अमन की तमन्ना कर रहा है। انڈونیشیا کے مغربی سماترا میں غیر لائسنس شدہ سونے کی کان کے منہدم ہونے سے 15 مزدور ہلاک ہو گئے اور مکاؤ اوپن بیڈمنٹن میں ٹریسا جولی اور گایتری گوپی چند کی جوڑی خواتین کے ڈبلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔